नेताई गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञान तिमिरांधश ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आप सब लोग तैयार है आज?
हरी बोल,
हरी बोल। बहुत पीछे क्यों बैठे हैं आप? इधर आगे आ जाइए ना। ठीक है। पहाड़ी प्रभु, पहाड़ी या पहाड़ी?
पहाड़ी।
ठीक है। हरे कृष्णा। तो हमारा ये पहला दक्षिण भारत यात्रा का स्थल है जहां हम, और वास्तव में देखा जाए ये चैतन्य महाप्रभु के विशेष अरेंजमेंट है कि हम सही स्थान से शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि हमारे संप्रदाय का ब्रह्म मध्व गौड़िया वैष्णव संप्रदाय का ये जन्म स्थल है। क्या है? जन्म स्थल है। और हर एक व्यक्ति को अच्छा लगता है जब वो अपने, जहां उसने जन्म लिया है उस स्थान को वो भेंट देता है, भेंट देना मीन्स विजिट करता है। तो ये उडुपी नामक ये स्थान है जहां उडुपी कृष्ण सारे जगत को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। अरे उडुपी कृष्ण मध्वाचार्य के विग्रह हैं। किसके विग्रह हैं? तो हम ट्रेन में जब आ रहे थे तो ये द्रविड़ भूमि जो ये साउथ इंडिया है उसके बारे में हमने काफी अलग अलग विषयों से संबंधित चर्चा की थी। तो चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत का भ्रमण कर रहे थे तो भ्रमण करते करते चैतन्य महाप्रभु श्रृंगेरी मठ आए जहाँ शंकराचार्य का स्थान है। शंकराचार्य ने श्रृंगेरी, उनका वो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है जहाँ शंकराचार्य ने अपना प्रमुख मठ आदि स्थापित किया। और उसके अलावा भी शंकराचार्य ने चार जो धाम हैं उनमें प्रमुख मठों की स्थापना की है। जैसे आप जगन्नाथपुरी जाते हो तो वह गोवर्धन मठ है, बद्रीनाथ में है, रामेश्वरम में है, द्वारका में है। तो ऐसे है उस स्थान को चैतन्य महाप्रभु ने विजिट किया और चैतन्य महाप्रभु से रहा नहीं जा रहा था। कहाँ दौड़ना चाह रहे थे चैतन्य महाप्रभु? इस स्थान में आना चाह रहे थे, यहाँ उडुपी। तो चैतन्य महाप्रभु वहां से अपने जो सेवक हैं उनके साथ, कौन से सेवक थे आज ही हम चर्चा कर रहे थे, कृष्णदास। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ एक सेवक थे कृष्णदास, उनको लेकर चैतन्य महाप्रभु यहाँ पहुंचते हैं। और यहाँ पहुंचते हैं कृष्णदास कविराज कहते हैं, मध्वाचार्य स्थाने आयला जहां तत्ववादी उडुपिते कृष्ण देखी हैल दिव्यन मादी। तो दो चीजें यहाँ हुई, मध्वाचार्य स्थाने आयला, चैतन्य महाप्रभु कौन से, किसका स्थान है? मध्वाचार्य का। तो ये मध्वाचार्य कोई साधारण आचार्य नहीं है। कल सुबह हम और मध्वाचार्य के इन लीलाओं का चर्चा करेंगे। उनका जो जन्म स्थल है जिसका नाम है पजाका क्षेत्र, क्या नाम है? पजाका क्षेत्र, जो यहाँ से 12 किलोमीटर दूरी पर है। तो कल हम वहाँ काफी समय बिताएंगे। तो मध्वाचार्य अलग अलग युगों में वैसे अवतरित हुए हैं। जब भगवान राम आए थे तो उस समय वास्तव में मध्वाचार्य हनुमान के रूप में थे। कौन से रूप में थे? हनुमान। आप अभी प्रसाद पाने गए थे? कहाँ गए थे प्रसाद पाने? इस्कॉन का जो सेंटर था वहां एक दीवार पर आपने एक चित्र देखा। किसने किसने देखा? क्या देखा आपने? मध्वाचार्य। हाँ, तो ये हनुमान जी आते हैं त्रेता युग में भगवान राम की सेवा के लिए, और वायुदेव हनुमान जी और कौन थे, पवन पुत्र, जो वायुदेव हैं वो पवन पुत्र हनुमान के रूप में आते हैं। और पांडवास के समय जब ये थे कृष्ण थे उस समय भीम के रूप में आते, किसके रूप में, भीम के रूप में। और वही कलियुगा में जब अत्यधिक रूप से मायावाद का प्रचार हो रहा था, बौद्धिज्म जैनिज्म आदि बहुत जोर शोर से आगे बढ़ रहे थे और लोग भगवत सेवा को भूलते जा रहे थे, भगवान की जो शुद्ध सेवा को स्थापित करने के लिए भगवान विष्णु वायुदेव को पुनः ऑर्डर देते इस कलियुगा में, और पुनः बलशाली आचार्य प्रकट होते हैं जिनका नाम क्या होता है, मध्वाचार्य। तो ऐसे मध्वाचार्य का ये स्थान है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु का वर्णन करते हुए कृष्णदास कविराज कहते हैं मध्वाचार्य स्थाने आयला जहा तत्ववादी। ये तत्ववादी जो मध्वाचार्य के फॉलोवर्स है उनको उनके फिलोसफी के अनुसार उनको तत्ववादी ये नाम दिया गया है, संबोधन दिया गया है। और चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए और आकर उन्होंने किसको देखा, उड़ुपीते कृष्ण देखी, किसको देखा, उड़ुपी में कृष्ण को देखा। दक्षिण भारत में कृष्ण को देखना बहुत कठिन है, बाकी सब जगह कौन है, चतुर्भुज विष्णु निवास करते हैं, लेकिन यहाँ उड़ुपीते कृष्ण देखी हैल दिव्योन्मादी, उड़ुपी में आए और उन्होंने आपने जो हृदय राजा है, चैतन्य महाप्रभु के हृदय राज कौन है, कृष्ण है। जैसे भक्तिनाथ ठाकुर कहते कि मेरे हृदय के राजा का भजन करो, उनके हृदय के राजा कौन है, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है। तो उड़ुपी ते कृष्ण देखी हैल दिव्योन्मादी, उड़ुपी में यहाँ आए और उन्होंने कृष्ण को देखा और दिव्य आनंद से भाव विभोर होकर चैतन्य महाप्रभु नृत्य करने लगे। तो ये उड़ुपी कृष्णा बहुत छोटे से विग्रह है और द्विभुज विग्रह है, कितने भुजा वाले हैं, द्विभुज। तो ये विग्रह वास्तव में कई सारे पुराणों में इस ये जो स्थान है, ये मध्वाचार्य का ये जो प्लेस है उड़ुपी का वर्णन आता है। एक स्थान पे कहा गया है कि ये जो उड़ुपी है ये रजत पीठ पूरम है, कौन सा स्थान है इसका ओरिजिनल नाम, रजत पीठ पूरम, रजत मीन्स चांदी, रजत पीठ पूरम इसे कहते हैं। और वास्तव में रजत पीठ पूरम उड़ुपी, वैसे देखा जाए जो शिवजी का जो स्थान है कैलाश उसको कहा जाता है रजताद्री, आद्री मीन्स माउंटेन, तो रजत आद्री, रजत से बना हुआ जो माउंटेन है वहां कैलाश में शिवजी निवास करते हैं, उससे भी कई गुना ये जो स्थान है रजत पीठ पूरम, ये जो स्थल है ये बहुत अधिक महान है। क्यों, क्योंकि उस स्थान में केवल शिवजी निवास करते हैं लेकिन यहाँ दोनों निवास करते हैं, शिवजी भी है यहाँ और दूसरे कौन है, कृष्ण भी है। और जो कृष्ण है शिवजी है जिनका नाम है चंद्रमौलेश्वर, क्या नाम है, चंद्रमौलेश्वर। और ऐसे भगवान कृष्ण की जो आराधना है वो मध्वाचार्य करते हैं, इसलिए शास्त्र कहते हैं काशी तले कृत पदापि सरितः सुराना मायाति यत् पवित्र अधुनोपि, कहते काशी में गंगा बहती है लेकिन वो गंगा काशी को छोड़कर उड़ुपी में आती है, कहाँ आती है, उड़ुपी। अभी हम यहाँ पीछे जाएंगे तो वहां एक बार मध्वाचार्य ने जब दीक्षा लिया तो उनके गुरु जी को कहा कि गुरुदेव मुझे गंगा स्नान करने जाना है दूर उत्तर भारत में, तो गुरु का इतना अत्यधिक प्रेम मध्वाचार्य से था कि मध्वाचार्य ने कहा अरे ये दूर चला जाएगा तो इनके विरह में मैं कैसे रहूंगा। तो फिर उन्होंने कहा मध्वा आपके लिए गंगा क्या होगी, यहाँ प्रकट होगी। तो हर 12 साल में
गंगा यहाँ जो सरोवर है जिसका नाम है पहले जिसका नाम है मध्व सरोवर, क्या नाम है? मध्व सरोवर है। तो वहां जो गंगा है वो बहती है, और ये इसलिए इतना सर्वोच्च स्थान है कि शिवजी और सारे देवता आकर इस धाम में उडुपी में सब लोग सेवा में लगे रहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो स्थल है उडुपी है बहुत मूल्यवान है या बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इस संप्रदाय के एक आचार्य थे, उन्होंने कहा कि यदि व्यक्ति को कोई भी शुभ कार्य शुरू करना है तो सबसे पहले मध्वाचार्य का स्मरण करना चाहिए। किसका स्मरण करना चाहिए? मध्वाचार्य का। वो कहते हैं विद्यारंभे विवाहे च कृष्णारंभे तथैव च राजद्वारे सभा मध्य प्राज्ञम मध्व संस्मरेत। चाहे विद्यारंभ हो या कोई भी चीज का कार्य क्यों ना हो, सबसे पहले ये जो कृष्ण के अनन्य भक्त है मध्वाचार्य, उनका स्मरण करना चाहिए। क्योंकि ये जो स्थल है इसकी स्थापना परशुराम ने की थी। किसने की थी? परशुराम। परशुराम ने जब 21 बार पृथ्वी के इनका जो घमंडी क्षत्रियों का वध किया था अपने एक्स से, क्या कहते इसके परशु परसा से फिर उसको जो पृथ्वी है उन्होंने ब्राह्मणों को डोनेट की, और फिर उनके पास स्थान नहीं बचा। उन्होंने सोचा परशुराम ने, कोई चीज आप किसी को दान करते हो तो फिर आपको वो वस्तु नहीं लेनी चाहिए। तो परशुराम ने सोचा कि मैंने ये भूमि दान कर दी है ब्राह्मणों को, तभी मैं कैसे रह सकता हूँ इस स्थान में। तो उनका जो परसा उन्होंने क्या किया, फेंक दिया। और उससे ये जो लैंड है कर्नाटका और केरला की लैंड क्या होती है, समंदर पीछे चला जाता है। जहां उनका फरसा समंदर तक गया था वहां तक समंदर पीछे गया और ये लैंड क्रिएट हुई। और इसलिए भी फिर परशुराम ने ये जो उडुपी स्थान है इसको स्थापित किया विशेष रूप से, जिसका नाम उनके द्वारा ही दिया हुआ है रजत पीठपुरम। और इसलिए शास्त्र कहते हैं कि उडुपी इतना महान है। ये स्थल क्यों महान है? क्योंकि भगवान कृष्ण अपने दोन प्रिय स्थानों को छोड़कर उडुपी में आकर निवास कर रहे हैं। वृंदावन को उन्होंने छोड़ दिया और द्वारका को उन्होंने छोड़ दिया, और कहां आकर निवास करने लगे? उडुपी में आकर निवास करने लगे। इसलिए वो कहते हैं द्वारवतीम सकल भाग्यवतीम उपेक्षा गोपाल बाल ललना कर पूजनम च वार्धिम वधु ग्रहमतित्य समद्वनाथो यत्रासि तद्रजत पीठपुरम गरीयः। गरीयः में श्रेष्ठ कहते द्वारवती सकल भाग्यवतीम उपेक्षा। लक्ष्मी द्वारका में कृष्ण की सेवा कौन करती है? लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम। सारी लक्ष्मियां बड़े आदर के साथ कृष्ण की सेवा करती है द्वारका में, और ऐसी लक्ष्मियों का कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए भौतिक संसार के जीव सदैव लालायित रहते हैं। लेकिन ऐसे कृष्ण द्वारका की उपेक्षा करते हैं। और दूसरा वो कहते हैं गोपाल बाल ललना कर पूजनम च। गोपाल बाल ललना कौन है? ललना वृंदावन की जो वधु है, हाँ श्रेया है, जो कृष्ण के टॉप मोस्ट डिवोटीज है, गोपिकाज है, उनकी सेवा को भी उन्होंने छोड़ दिया, ऐसे आचार्यगण कहते हैं। और ऐसे कृष्ण कहाँ आते हैं? वार्धिम वधु ग्रहम आतिथ्य स मध्वनाथो। वो मध्व मध्वाचार्य के नाथ बनते हैं। यत्रास्ति तद रजत पीठ पुरम गरीयः, कि ऐसे रजत पीठ पुरम उडुपी श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान उन दोनों को छोड़कर यहाँ आकर क्या करते हैं? निवास करते हैं। तो ऐसे भगवान कैसे यहाँ आते हैं, जिसका वर्णन बहुत विशद रूप से चैतन्य चरितामृत में भी कृष्णदास कविराज ने किया है, और कृष्णदास कविराज के अलावा अलग अलग स्थानों में भी हम पढ़ते, प्रभुपाद ने तात्पर्य में भी लिखा है कि मध्वाचार्य कई बार सुबह सुबह भ्रमण करने के लिए जाते थे। तो 1285 में रात्रि के समय में
अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त का समय था, जिस समय मध्वाचार्य वहां समंदर के तट पर गए, ऐसा कहते हैं मालपे बीच, कौन सा बीच है वो, मालपे बीच के तट पर गए। और यहां से जब जाते जाते मध्वाचार्य अपने मन में भगवान की स्तुति प्रिपेयर कर रहे थे, कई सारे श्लोकज उनके हृदय और मन में आ रहे थे। और ऐसे करते करते जब वो समंदर के तट पर पहुंचे तो उस समय देखा कि दूर से एक जहाज, एक बड़ी नाव या जहाज नजर आई, और वो नाव डूबने वाली थी उस तूफान से। लेकिन मध्वाचार्य ने क्या किया, उनको इशारा किया कि हाँ यहाँ आप लैंड कर सकते हो सरलता से। तो मध्वाचार्य ने जो ऊपर का जो उनका वस्त्र था, उत्तरीय वस्त्र, उसको उठाया और ऐसे घुमाया, उनको दिशा दी। उनको घुमाने की क्या आवश्यकता, वो स्वयं वायुदेव है, तूफान को क्या कर सकते हैं। कई बार ऐसे कहते हैं कि उन्होंने उस तूफान की सहायता से उस नाव को ऐसे क्विकली एक ओर लाके खड़ा कर दिया। तो ऐसे उन्होंने इशारा आदि किया, उस नाव और सारे लोगों को बचाया। और जो नाव का जो ओनर था आके, मध्वाचार्य तो सन्यासी थे, कितने साल में सन्यास लिया था, 12 साल में, कितने साल में, 12 साल में। शंकराचार्य ने तो 5 साल में लिया था, चैतन्य महाप्रभु ने 24 साल में, हिजोली ने, जयपताका महाराज ने 21 साल में लिया था। तो यहाँ मध्वाचार्य ने 12 साल में सन्यास लिया, बल्कि एकलौते पुत्र थे, लेकिन उनके माता पिता उनके सन्यास लेने से पहले चरणों में गिर पड़े, बेटा अकेले हो, सन्यास मत लो। तो मध्वाचार्य कहते हैं सीनियर को कभी जूनियर के सामने नहीं झुकना चाहिए, ऐसा मध्वाचार्य कहते। मतलब माता पिता कहते मैं तो आपका बेटा हूं, ये शोभा नहीं देता कि आप मेरे चरण पकड़ो, मेरे सामने गिड़गिड़ाओ, प्रणाम करो। लेकिन मध्वाचार्य कहते कि जब पुत्र सन्यासी हो जाता है तो माता पिता झुक सकते हैं उसके सामने, प्रणाम कर सकते हैं, वो अलाउड है। लेकिन कहते अभी मैं सन्यासी नहीं बना, मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग मुझे परमिशन नहीं दे रहे हो। तो लेकिन बाद में मध्वाचार्य ने कहा, हे माता, यदि दूसरा पुत्र आपके गर्भ से जन्म लेगा तो मैं समझूंगा कि वो आपके टेक केयर करेगा, फिर मैं संन्यास ग्रहण करूंगा। तो एक साल में मध्वाचार्य की शक्ति से ही उनके माता एक नए पुत्र को जन्म देती है। और आगे चलकर मध्वाचार्य अपने भाई को भी नहीं छोड़ते, उसको भी क्या करते हैं, संन्यास दे देते हैं। तो ऐसे मध्वाचार्य सन्यासित है। तो जैसे वो नाव आई वहां, और वो नाव का जो ओनर था वो आकर मध्वाचार्य के चरणों में गिड़गिड़ाता है, और जैसे ही उनके चरणों में पड़ता है और कहता है कि मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ, आपके लिए जो भी धन, मूल्यवान रत्न, हीरे, माणिक्य आदि है वो आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। तो मध्वाचार्य ने कहा मुझे तो उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप मुझे बताइए आप कहाँ से आए हो। तो उन्होंने कहा हम कहां से आए हैं, द्वारका से आए हैं। कहां से आए हैं आप लोग, कहां से आए हैं? तो यहाँ गोपी आए हो, भगवान के लिए कुछ लाए हो कि नहीं, दिल्ली की कुछ विशेष चीज, हमें सोच के निकलना होता है, यही अफेक्शन, लव, प्रेम का मतलब है कि जिस व्यक्ति को हम मिलने जा रहे हैं उसको हम बेस्ट चीज ऑफर करते, सोच निकलते समय सोचते हैं हम उडुपी कृष्ण के पास जा रहे हैं, हाँ तो उनके लिए हम क्या ले जाना चाहिए मुझे। जैसे कई डिवोटीज देखता हूँ मैं, चाहे वो किसी, जैसे मुझे कल पाकिस्तान के भक्तों ने फोन किया था, वो अभी 26 तारीख को आ रहे हैं दिल्ली, तो मैंने कहा मैं तो रहूंगा नहीं, मैं तो 4 को आऊंगा। तो उन्होंने कहा हम तो महाराज को मिलने के लिए आ रहे हैं, हमें क्या लाना चाहिए महाराज के लिए। मैंने कहा पाकिस्तान में जो आपको लगता है बेस्ट चीज है वो क्या करनी चाहिए आपने, महाराज को लाने चाहिए। जैसे मैंने कहा हमारे दुबई आदि के जो अबू धाबी वगैरह के भक्त हैं, वो जब आते हैं तो वहाँ के जो ड्राई फ्रूट्स हैं, हाँ वो सब चीजें लेके आते हैं। तो वैसे ही आपको लगता है कि वहाँ कुछ समथिंग स्पेशल है, क्योंकि हमारा स्वभाव क्या है, जो हमें प्रिय है उनको हमको स्पेशल चीज देना चाहते हैं। तो वैसे ही मध्वाचार्य जब वहां आए वहां थे तो इन्होंने पूछा, आप द्वारका से आ रहे हो तो द्वारका से एक विशेष चीज लेके आए होंगे आपके साथ। हाँ, द्वारका किस चीज के लिए फेमस है? चंदन। किसके लिए? गोपी चंदन। तो आप द्वारका से आए हो तो जरूर आपने गोपी चंदन लाया होगा। तो जो भी द्वारका जाता है वो जरूर अपने साथ गोपी चंदन लेके आता है, और वास्तव में उसकी द्वारका यात्रा तब सफल होती है। तो आप में से कितने लोग गए द्वारका? पिछले साल ही गए थे हम लोग। हाँ, तो अभी तक है गोपी चंदन वहां का। तो फिर वो सारे उन्होंने इतना इतना सा गोपी चंदन नहीं लाया, इसका चार्ज नहीं किया हुआ है। चार्ज है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। बैटरी खत्म हो गई। हरे कृष्णा। तो अभी हम कहाँ थे? द्वारका से इधर आ रहे हैं। नजदीक ले आइए।
हरे कृष्णा। हाँ, तब तक दूसरा माइक ले आइए।
तो गोपी चंदन, उनको लगा कि गोपी चंदन लाया होगा उन्होंने, मतलब पूछा उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि हम गोपी चंदन लेके आए हैं। तो गोपी चंदन वो कुछ थोड़ी थोड़ी मात्रा में नहीं लेके आए थे, उन्होंने बड़े बड़े ढेले, क्या कहते, ढेला ढेला ना, बड़ा बड़ा ढेला गोपी चंदन का अपने साथ लेके आए थे। और उन्होंने कहा कि हम एक गोपी चंदन का ढेला आपको अर्पित करना चाहते हैं। तो उन्होंने उठाया और मध्वाचार्य को अर्पित किया। मध्वाचार्य बहुत खुश हो गए, क्योंकि भक्त तो भगवान के या भक्तों के चरण धूलि की कामना करता है सदैव। इसलिए कहते हैं महत पाद रजोभिषेकम, भगवान से प्रेम तभी होगा जब भक्तों के चरण कमलों के धूल से हम क्या करेंगे, स्नान, तिलक नहीं लगाएंगे, स्नान करेंगे। तो गोपी चंदन तो गोपियों के चरणों की क्या है, धूली है, या उन्होंने जो अंगराग यूज किया था बॉडी में उससे वो मिट्टी बनती है वहां। तो ऐसे गोपी चंदन को उन्होंने लिया, इतना आनंद हुआ उन्हें मध्वाचार्य को। अभी आप किसी को मिलने जाओगे, आप कहोगे ये लीजिए गोपी चंदन। अब द्वारका के बाद पता नहीं किसी को गोपी चंदन दान करना चाहिए, हमेशा बहुत लाभदायक है। तब आपने किसी रिश्तेदार को कहोगे जाके, क्या लेके आए आप द्वारका से, हम तो आपके लिए मिट्टी का एक ठेला लेके आए हैं। ओके, वो तो आपको आपको अंदर से गालियां देगा। हाँ, तो इस प्रकार से, लेकिन मध्वाचार्य आनंदित होते हैं और मध्वाचार्य उस ढेले को उठाते हैं, और उठाते तो थोड़ा आगे चलते हैं तो वहां वो ढेला, उसमें से एक ढेला टूट जाता है और उसमें से एक विग्रह निकलते हैं। वो कौन से थे? बलराम। कौन से थे? हाँ, तो हम कल शाम को वहां जा रहे हैं मालपे बीच पर, तैरने नहीं जा रहे। हाँ, वहां बलराम जी का दर्शन करने जा रहे हैं। तो बलराम के जो विग्रह वहां मूर्तिमान रूप में उससे प्रकट होते हैं, और फिर मध्वाचार्य, फिर जो बड़ा ठेला था, ठेला नहीं ढेला था, ढेला ना, ठेला तो पता है, प्रभुपाद एक क्लास में ठेले का उदाहरण देते हैं, कहते गधा भी ठेला ले जाता है और आजकल मनुष्य भी ठेला धो रहा है, इतना कष्ट उठा रहा है। तो अभी आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया यार, ढेला ढेला ना, ठीक है अभी बोलूंगा नहीं। ढेला उन्होंने उठाया और इतना हेवी था, कहते हैं कि 30 लोग नहीं उठा सकते, ऐसा वो ढेला उन्होंने उठा लिया। और मध्वाचार्य एक स्तोत्र का उच्चारण करने लगे, उन्होंने अभी अभी कंपाइल किया था द्वादश, हाँ जो स्तोत्र है, हाँ जो यहाँ रोज सुबह गाया जाता है। तो उसको मध्वाचार्य ने उठाया और लाया यहाँ, अपने कंधे में डालकर गाते गाते यहाँ पहुंचे, और वो जो मध्व सरोवर है उसमें उन्होंने ऐसे डालते ही हाँ वो मिट्टी अलग हो गई और उसमें से और एक विग्रह निकले। वो विग्रह कौन से थे? उडुपी कृष्णा। उडुपी कृष्णा के, तो उडुपी कृष्णा
ये द्वारका को छोड़कर यहाँ आ गए। आप सोचो, भगवान हमेशा अपने भक्त से सेवा लेने के लिए एक भक्त को ढूंढते हैं, क्या करते हैं, ये कृष्ण का गुण है। भगवान चूज करते हैं, ढूंढते हैं डिवोटी को, जैसे माधवेंद्र पुरी गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे। उस समय वो गोविंद कुंड में गए तो गोपाल के विग्रह वहां जमीन के अंदर थे। तभी कितने लोगों ने गोवर्धन परिक्रमा की थी उससे पहले भी, लेकिन जब माधवेंद्र पुरी गए तो उन्होंने गोपाल ने ढूंढ लिया अपने भक्त को कि मुझे सेवा लेनी है तो किससे लेनी है, माधवेंद्र पुरी से। तो उसी प्रकार से भगवान जब इस संसार से अप्रकट हो गए थे 5000 साल पूर्व, तब ये विग्रह द्वारका में थे। और उस विग्रह, क्योंकि एक बार जो देवकी माता है, देवकी माता ने सोचा कि यशोदा कितनी सौभाग्यशाली है, उन्होंने कृष्ण की सारी बाल लीलाओं को अपने आंखों से देखा है। उस बाल लीलाओं को देखा नहीं, उस बाल लीलाओं में उन्होंने भाग लिया है। तो देवकी उनके सौभाग्य का वर्णन कर रहे थे और वो सोच रहे थे कि ऐसा सौभाग्य कब मुझे मिलेगा कि मैं कृष्ण को एक बाल मुकुंद के रूप में देखूंगा, जो माखन चोरी आदि कर रहे हैं, हाँ ये सब चीजों के बारे में वो सोच रहे थे। तो भगवान को ऐसा उन्होंने कहा तो भगवान तुरंत, हाँ ये कहाँ घटित हो रहा था, द्वारका में। अभी तो कृष्ण 16,100 रानियों के पति थे और इतने बड़े स्वामी थे। भगवान को कहा कि आपके बाल लीला को मैं देखना चाहती हूँ, अनुभव करना चाहती हूँ, इस रूप को मैं देखना चाहती हूँ। तो कृष्ण तुरंत उनके महल में इस बाल रूप में प्रकट हो जाते हैं। एक हाथ में दधि मंथन करने वाला रॉड है, क्या है, एक हाथ में दधि मंथन करने वाला रॉड है और दूसरे हाथ में दधि मंथन करने वाली रस्सी है। तो ये जो डेटी है इनके हाथ में ये दो चीजें हैं। एक हाथ में क्या है, रॉड है दधि मंथन का, क्या कहते हैं रॉड को, मथानी, सही वर्ड है मथानी, और दूसरे हाथ में रस्सी है। तो ऐसे उडुपी कृष्ण का ये स्वाभाविक रूप। और ये जब भगवान दिखा रहे थे उनको, तो रुक्मिणी ने ऊपर किसी मंदिर में खड़ी होगी, उन्होंने भी दूर से देखा। फिर जब भगवान आए उन्होंने कहा देखो मैंने वो रूप देखा है और मैं चाहती हूँ कि उसकी पूजा और आराधना करना चाहती हूँ। तो भगवान क्या करते हैं, विश्वकर्मा के द्वारा शालिग्राम शिला से इस रूप को बनाते हैं, कृष्ण और बलराम। और उसकी उपासना या आराधना वास्तव में रुक्मिणी देवी कर रही थी। और फिर जब भगवान प्रभास क्षेत्र में यदुवंश का विनाश करते हैं और इस संसार से अपनी लीला को एंड करते, लीला खत्म करते हैं, तो फिर सारा जो द्वारका है पानी में डूब जाता है। तो उस समय अर्जुन इन विग्रहों को रुक्मिणी वन में डाल देते हैं और ये जो गोपी चंदन तालाब आदि ये सब रुक्मिणी वन का भाग है। तो उसमें ये मिट्टी के अंदर ये विग्रह चले जाते हैं। और कालांतर में जब वो निकाला जा रहा था चंदन, तो चंदन के ढेले में ये विग्रह प्रकट होते एक प्रकार से। और मध्वाचार्य से सेवा लेने के लिए भगवान द्वारका को छोड़कर कहां पहुंचते हैं, उडुपी में पहुंचते हैं। तो मध्वाचार्य जब यहाँ उनको लाए तो तुरंत मध्वाचार्य बहुत आनंदित हुए भगवान को देखकर। और यहाँ ये जो उडुपी कृष्णा है उनकी बहुत विशेष सेवा होती है। उडुपी कृष्ण को जितने अलंकारों से सजाया जाता है, विश्व में कोई भी ऐसा विग्रह या डेटीज नहीं है जिनको ऐसे ऐसे अलंकार पहनाए जाते हो। इतने सुंदर रूप से उनका श्रृंगार और नाना प्रकार के जो अलंकार है उनसे सजाया जाता है, उनकी सेवा आदि की जाती है। तो मध्वाचार्य उनकी सेवा करते थे और उनकी सेवा करने के लिए वास्तव में जो सन्यासी है वही व्यक्ति क्वालिफाइड है उनकी सेवा करने के लिए। आजीवन जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया है और सन्यास स्वीकार किया है वही व्यक्ति उन्हों पे कृष्ण की सेवा करता है। तो आज भी जो सन्यासी, उनकी सेवा करने के लिए केवल सन्यासी अलाउड है, जो उनकी प्रमुख सेवा करते हैं उड़ुपी कृष्ण की। और आज भी जो सन्यासी नियुक्त की जाते हैं, वो सन्यासी का जो जन्म कुंडली है वो 7 एस्ट्रोलॉजर देखते हैं और पता करते हैं कि फ्यूचर में ये अपने धर्म से नीचे गिरेगा तो नहीं, और तभी वास्तव में उसको उड़ुपी कृष्ण की सेवा दी जाती है। और हर 2 साल में यहाँ बड़े बड़े उत्सव आदि होते हैं उस फेस्टिवल के लिए। तो ऐसे मध्वाचार्य भगवान की वात्सल्य रस में सेवा करते थे। मध्वाचार्य रात्रि 11 बजे सोते थे और 2 बजे उठ जाते थे, किसकी सेवा के लिए? उड़ुपी कृष्ण की सेवा के लिए। और सेवा के जो सबसे हाई स्टैंडर्ड्स हैं वो यहाँ उड़ुपी कृष्ण की सेवा में लागू होते हैं। तो मैं जस्ट कुछ रीडिंग करता हूँ कि सुबह से लेकर शाम तक इनकी कौन कौन सी सेवाएं होती हैं। मैं जस्ट अभी आने से पहले थोड़ा पढ़ रहा था, मैंने जो पढ़ा था वो मैं दिल्ली में भूल गया, जो प्रिपेयर किए थे मैंने पेजेस। तो मॉर्निंग में जो सबसे पहली सेवा होती है, मंदिर 4 बजे ओपन होता है और अराउंड 5 बजे या 4:30 के बाद ही 5 बजे भगवान की सेवा होती है, जिसको कहते हैं निर्माल्य विसर्जन सेवा। कौन सी सेवा? विसर्जन सेवा। इसमें क्या होता है और ये देखनीय है, तो कल हम ट्राई कर रहे हैं कि कल सुबह का समय पूरा समय हम टेंपल में बिताएंगे, यदि वो हमें अलाउड करते, वह बैठना वो अलाउ करते हैं, ऐसे डिवोटीज कह रहे थे। तो सुबह के समय से हम वहीं चैंटिंग करेंगे और जो भी प्रोसीजर वहां होती है उनको देखने का प्रयास करेंगे। तो जो पहली सेवा है निर्माल्य विसर्जन सेवा, सुबह सुबह जो उनके प्रमुख आचार्य हैं वो आते हैं वेदों का मंत्रों का उच्चारण करते हुए, और जो प्रमुख स्वामी हैं जो उनकी सेवा करते हैं ड्यूटीज की, वो रिंग बेल कर घंटी बजाते हुए है। भगवान ने जो एक दिन पहले जो श्रृंगार किया है, जितने अलंकार धारण किए हैं उनको उतारा जाता है और उतारते हैं पूर्ण रूप से, और फिर केवल भगवान को फ्लावर्स चंदन आदि रखते हैं और उनका एक विशेष दर्शन होता है जिसको कहते हैं विश्वरूप दर्शन। कौन सा दर्शन है? विश्वरूप दर्शन। और फिर भगवान की 7 बार आरती होती है और फिर भगवान को राइस, कर्ड, मूंगफली, जिंजर, गुड़, नारियल, नट्स की ऑफरिंग होता है। फिर उसके तुरंत बाद दूसरी सेवा शुरू होती है, उसे कहते हैं उषा काल पूजा। कौन सी? जिसमें 2 सिल्वर पॉट से भगवान को अभिषेक किया जाता है और फिर चंदन की जो पेस्ट है और तुलसी अर्पित करते हैं। फिर 8 बार आरती होती है। कितनी बार? 8 बार। और अलग अलग नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं, राइस, मिल्क, कर्ड, कोकोनट वाटर, नारियल, पान और नट्स। फिर उसके तुरंत बाद शुरू होती है अक्षय पात्र पूजा। कौन सी? तो मध्वाचार्य बहुत परफेक्ट आचार्य थे, उन्होंने कहा, उन्होंने ये नियम बनाकर गए, वो इतने सालों में, इतने साल हो गए, उन्होंने कहा जो भी हमारे मंदिर आएगा उसे प्रसाद और चरणामृत मिलना चाहिए किसी भी हालत में। इसलिए प्रभुपाद बहुत फिक्स थे कि हमारे मंदिर में चरणामृत हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। तो मध्वाचार्य ने ये 2 चीजें रखी। तो मध्वाचार्य के समय में मध्वाचार्य ने एक अक्षय पात्र दिया, यहाँ एक पॉट है और उसके साथ एक स्पून है। तो सुबह के समय में भगवान की सर्वप्रथम पूजा होती है और फिर अक्षय पात्र और वो जो स्पून और गाय, इनकी पूजा अल्टर के पास ही होती है ऐसा वो कहते हैं। और फिर उसके बाद जो भगवान का विशेष दर्शन होता है, जो मैंने पहले भी कहा है, जिसको कहते हैं विश्वरूप दर्शन। कौन सा दर्शन? और फिर 5वां स्टेप है उनकी पूजा का सुबह के, वह है पंचामृत अभिषेक। पंचामृत अभिषेक में सबसे पहले गोल्डन कॉइन्स, क्या कहेंगे, सुवर्ण के जो मुद्राएं हैं, उनसे भगवान का अभिषेक होता है। और उसके बाद घी, मिल्क, दही, गुड़ और शहद, और फिर 32 कोकोनट वाटर हाँ, जिसमें अच्छा अच्छा पानी हो, ऐसे पानी से भगवान को नहलाया जाता है। तो हर एक सेवा के बाद उनकी उनको उनकी आरती होती है, और फिर उनको पहले नैवेद्य अर्पित किया जाता है और फिर आरती। तो ये लगभग सारी सेवाएं 10 बजे तक चलती है। कितने बजे तक? सुबह से 10 बजे तक कंटिन्यूअसली ये सब सेवाएं चलती रहती हैं। उससे तुरंत बाद छठी चीज है, उसको कहते हैं उदवर्तन पूजा। क्या कहते हैं? उदवर्तन पूजा, जिसमें 2 सिल्वर पॉट में भगवान को पानी से नहलाया जाता है फिर से, और फिर उनको क्लीन करते हैं और उनको सैंडल पेस्ट वगैरह ऑफर की जाती है। ऐसा होता है कि नहीं? तो दूसरी पूजा शुरू होती है, उसको कहते हैं कलश पूजा। कौन सी? देखो भगवान की सेवा के लिए कितना कंटिन्यूअसली ये सर्विंग एटीट्यूड है। तो जब इस प्रकार से भगवान की सेवा इस प्रकार से करते हैं, तो हमारे अंदर भोग करने की जो भावना है वो कम होने लगती है, खत्म होने लगती है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा डेटीज को बेस्ट क्लोथ से सजाओ, डेटीज को अच्छे अच्छे व्यंजन अर्पित करो, तो फिर आप अपने प्रति जो भोग करने की भावना है वो हमारे हृदय से कम हो जाती है। और अगला जो उनका सीक्वेंस है उसको कहते हैं तीर्थ पूजा। क्या कहते हैं? तीर्थ पूजा, जिसमें फिर से भगवान को नहलाते हैं और फिर सिल्क क्लोथ से प्रॉपरली साफ करते हैं। तो हर एक चीज के बाद नैवेद्य अर्पित किया जाता है और फिर आरती की जाती है। फिर है जिसको कहते हैं अलंकार पूजा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी जाकर फिर भगवान को नए वस्त्र पहनाते हैं, इतने सारे अलग अलग अलंकार भगवान को धारण किए जाते हैं, और फिर उसके बाद आरती आदि होती है, और फिर उसके बाद और एक सीक्वेंस है जिसको कहते हैं अवसर सनक आदि पूजा। क्या कहते हैं? अवसर सनक आदि पूजा, मतलब ओरिजिनली उडुपी कृष्ण की सेवा ये जो 4 कुमार है वो किया करते हैं, तो उनका प्रतिनिधित्व करते हुए ये जो सन्यासी है वो उनकी पूजा करते हैं। और फिर 11वीं चीज है जिसको कहते हैं महापूजा। क्या कहते हैं? हाँ, ये सबसे आखिरी सुबह की पूजा है, जिसमें जो प्रमुख सन्यासी है जिनको केवल अधिकार है ये पूजा करने का, और वो साक्षात मध्वाचार्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ऐसे कहा जाता है कि मध्वाचार्य इनके माध्यम से सेवा करते हैं, और ये दोपहर की सेवा का आखिरी सेवा है जिसमें वो पर्याय स्वामी, अभी जो उनकी सेवा कर रहे हैं फिलहाल, जिनको कहते हैं पर्याय स्वामी है जो उनकी सेवा करते हैं कंटिन्यूअसली। तो ये फिर दोपहर तक एंड होता है 10-11 बजे तक, और फिर शाम की सेवाएं शुरू होती हैं। शाम को मुझे टाइमिंग्स पता नहीं है, लेकिन शाम की सेवा शुरू होती है जिसको कहते हैं सबसे पहली सेवा है चामर सेवा। क्या सेवा है? तो हम अभी क्लास करके निकल पड़ेंगे टेंपल में। तो चामर सेवा, जहां जो प्रमुख स्वामी है वो 2 चामर लेते हैं और अल्टर के बाहर खड़े होकर भगवान को चामर करते हैं 10 मिनट के लिए, और चामर करते करते भगवान की स्तुति करते हैं, और फिर बाकी उनके जो सन्यासी डिसाइपल्स हैं उनको वो चामर आदि देते हैं। और फिर है भगवान की रात्रि पूजा, ये सेकंड है, और फिर तीसरा है उत्सवम। 7 बजे के आसपास हम जाएंगे तो भगवान बाहर निकलते हैं, उनके छोटे जो उत्सव विग्रह है, और रियली अमेजिंग है। शाम को अभी पता नहीं, मैं 2009 में आया था यहाँ, उसके बाद अभी आ रहा हूँ, तो वो पहला मेरा विजिट था उडुपी कृष्ण का, तो मैं हमेशा याद करता हूँ। 2 चीज मुझे याद रहती है यहाँ की। एक है ये जो भगवान बाहर आते हैं उनका भ्रमण करना, और दूसरा है यहाँ जो मैंने प्रसाद पाया था। तो ये 2 चीजें मैं कभी भूला नहीं उडुपी की। तो भगवान जब बाहर आते हैं, है बहुत छोटे विग्रह लेकिन इतनी आलिशान और इतने सुंदर है, और उनकी सेवा भी बहुत अच्छी तरह से होती है। और दूसरी चीज, जब हम यहाँ पहुंचे थे 10 बजे के आसपास, 10-11 बजे ऐसे कुछ, और इसी बिल्डिंग में रुके थे, हमें तो पता नहीं कहाँ रुकना, देखा यार नजदीक सबसे चलो पूछते, तो यहाँ रुके थे सेकंड फ्लोर में। तो फिर सोचा भूख लग रही है, साउथ में प्रसाद प्राप्त करना बहुत कठिन है, तो हम तो 3 ब्रह्मचारी घूम रहे थे 1 महीने से, तो प्रसाद कई दिन तो फास्टिंग ही करते थे, केले खाकर ही घूमते थे। तो यहाँ आए तो सोचा बहुत प्रसाद मिलेगा, क्योंकि मध्वाचार्य ने यहाँ फ्री प्रसाद का व्यवस्था किया है। तो हम आनंदित हो रहे थे कि कब दोपहर के 11-12 बजेंगे कि प्रसाद हॉल में जाएंगे। तो जैसे टाइम हो गया दौड़ पड़े, तो इतने सारे लोग पूरा भीड़ वहां इकट्ठा हो गया था, उसमें हम भी गए। गए तो देखा इतना बड़ा सा हॉल, उस हॉल में सबको बिठा दिया, हम भी उन लोगों के साथ बैठ गए लाइन में और वेट कर रहे थे कि पत्तल आएगा सामने। क्या आएगा? पत्तल आया नहीं, सीधा राइस की बाल्टी आई और फर्श, हाँ, सेकंड फ्लोर में उस बिल्डिंग के फर्श पर पहले तो एक पानी का बाल्टी आया एक व्यक्ति लेकर हाथ से, ऐसे पानी जितने लोग बैठे थे, हजारों लोग थे, ऐसे नहीं कि 10-20 लोग, कम से कम 600 लोग प्रसाद एक ही समय में बैठे थे हम, तो सबके आगे हाथ से ऐसे पानी डालते जा रहा था। अतः हमने सोचा यहाँ का कोई विशेष कल्चर है, दूसरों को देखकर हम भी फॉलो कर रहे थे। देखा पड़ोस वाला व्यक्ति अपने सामने पानी से ऐसे साफ कर रहा है आगे की जगह, तो हमने भी अपना हाथ घुमा लिया सामने। फिर देखा कि राइस का बाल्टी आ गया, अभी सोचा राइस किस में लेते, हाथ में तो नहीं लेते, पत्तल आया नहीं, राइस वाले ने पूछा नहीं कोई, आते ही सीधा राइस डाल दिया फर्श पर। अभी सोचा ये क्या है, लाइफ में फर्स्ट टाइम कि हम फर्श पर खा रहे हैं। अच्छा अच्छा अनुभव था मध्वाचार्य के स्थान में। फिर दूसरा एक डिवोटी आया, रसम लेके आया, रसम जानते ना साउथ इंडियन, पानी से भी ज्यादा पतला होता है और वो बहने में बहुत, वो कहा भी बहता है। तो रसम, अभी वो रसम राइस के ऊपर डाला तो अनकंट्रोल्ड वो बहते जा रहा था, हमारी सारी मेहनत उसको कंट्रोल करने में लगी हुई थी। फिर राइस में उसको कर रहे थे ट्राई, देखा सब लोग इतने आनंद से खा रहे, हम क्यों आनंदित नहीं है। तो फिर हमने भी प्रसाद पाना शुरू किया, पूरा फर्श को क्या कहते हैं उसको, हाँ, जैसे हमारे दामोदर प्रिया प्रभु, प्लेट उनको दे दो पहले जो आप सर्व करते हो वो बिल्कुल क्लीन रहती है, खाने के बाद चेक करो उनकी प्लेट कैसे मिलेगी। तो हम भी ऐसे क्लीन कर करके खा लिए। फिर सोचा तीसरी चीज आई और आखिरी में छास, छास होता है ना, छास, छाछ, वो आ गया। अभी कैसे पिए उसको, हमेशा कोई शुरू पहले दूसरे को देखता था कि वो क्या कर रहा है, देखा कि वो लोग ऐसे हाथ को किए और ऐसे पी रहे, तो हमने भी ऐसे कर लिया ऊपर से, हाँ, जो चम्मच था ऐसे हाथ में ऐसे गिरा रहा है और हम ऐसे पीते जा रहे हैं, तो बड़े खुश थे हम। उडुपी कृष्ण तो भूल गए लेकिन एक चीज को याद रखा, क्या है, प्रसाद। तो ऐसा ये मध्वाचार्य का विशेष वो था कि यहाँ जो भी आए उसको प्रसाद मिलना चाहिए, इसलिए यहाँ जो कुकिंग होता है वो अक्षय पात्र है जो मध्वाचार्य ने दिया है हजारों साल पहले। तो फिर भगवान का ये उत्सवम भी बहुत अच्छा लगा मुझे, उसके सामने फायर्स जलाते हैं, नाचते हैं, कीर्तन बजाते हैं, ड्राम्स, प्रेयर चांट करते हैं। और फिर तीसरी सेवा है भगवान को, उसको कहते हैं कोललु सेवा। क्या कहते हैं? कोलो, जहां भगवान को टेम्पल के अंदर ही गर्भगर से बाहर निकालकर अंदर ही अंदर ऐसे पालके में बिठाकर म्यूजिक बजाकर उनको परिक्रमा करवाते हैं। और फिर सबसे आखिरी सेवा होती है 5वीं शाम को, जिसको कहते हैं एकांत सेवा। एकांत सेवा में किसी को अलाव नहीं है, उन सन्यासी और ये बड़े बड़े भक्तों के अलावा, वो भगवान को सुलाते हैं, प्रेयर शांत करते हैं, वो बहुत विशेष सेवा है भगवान की। तो इस प्रकार से मध्वाचार्य के ये विशेष विग्रह है, मध्वाचार्य के प्रेम के कारण भगवान द्वारका से ये लक्ष्मियों की सेवा को छोड़कर, ब्रज की ललनाएं गोपिकाओं की सेवा को छोड़कर मध्वाचार्य से सेवा स्वीकार करने के लिए हजारों किलोमीटर भगवान यहाँ आते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि मध्वाचार्य का इतना प्रगाढ़ प्रेम था, ये प्रेम की भावना ने भगवान को आकर्षित कर लिया कि भगवान इतने दूर से चल के आए, सोचो। इस प्रकार से ये जो उडुपी कृष्णा है, तो कल और कल के जो प्रवचनों में मैं और अधिक माधवाचार्य का विस्तार से वर्णन करूंगा, उनके अलग अलग जो लाइफ स्टोरीज आदि हैं। तो ऐसे यहाँ एक डिवोटी हुए थे कर्नाटका में, जिनका नाम था कनक दास। तो ये कनक दास नीच परिवार में उन्होंने जन्म लिया था, जैसे बकरियां चराना वगैरह ऐसे फैमिली में। और ये कनक दास भगवान के महान भक्त थे, उनके सॉन्ग्स इतने पावरफुल थे कि भगवान खींचे चले आते थे। लेकिन जब कनकदास यहाँ आए तो ब्राह्मणों ने उनको अंदर जाने नहीं दिया कि आप उडुपी कृष्ण का दर्शन, आप नीच परिवार के हो, आप नहीं अंदर जा सकते। तो कनकदास एक दूसरी ओर पश्चिम की ओर खड़े हो गए, जहां दीवार ऐसे था, और वहां खड़े होकर भगवान की प्रीति है, प्रीति में गीत गाने लगे। और भगवान उनकी सेवा और उनके गीतों से, प्रार्थनाओं से इतने आकृष्ट हो गए कि उडुपी कृष्ण का फेस पूरब की तरफ था, ये जो पूरब है वो पश्चिम की ओर हो गया, और जहां वो दीवार थी वो क्या हो गई, टूट गई, ऐसे विंडो बन गई। उसको कहते हैं कनक खिंडी। क्या कहते हैं? हाँ, तो कनक ने जहां दर्शन किया भगवान का, आज भी है वो आज भी जाकर लोग उसमें से जाकर किसको देखते हैं, भगवान को देखते हैं। तो ऐसे उडुपी कृष्णा बहुत वात्सल्यमय विग्रह है। हाँ, उडुपी कृष्ण से हम प्रार्थना करें मध्वाचार्य के माध्यम से। तो मध्वाचार्य के संप्रदाय से चैतन्य महाप्रभु ने दो चीजें ली थी। एक चीज ली थी अद्वैतवाद का निरासन, मतलब मायावाद का पूर्ण रूप से क्या खंडन। मध्वाचार्य पावरफुल थे, निर्विशेषवादी, मायावाद का खंडन करना, और दूसरा श्री विग्रह की आराधना। हाँ, मतलब कृष्णा एज पर्सन या मूर्ति, जो साक्षात कृष्ण है, ये भावना मध्वाचार्य के संप्रदाय में उत्कृष्ट रूप में है। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये दो चीजें मध्वाचार्य के संप्रदाय से ली थी। और चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट होने से पहले, मध्वाचार्य जब मायापुर नवद्वीप में आए थे, तो चैतन्य महाप्रभु जो गौरचंद्र थे, मध्वाचार्य को स्वप्न में आकर कहते हैं कि हे मध्वा, मैं अवतरित होने वाला हूँ जल्द ही गौरांग महाप्रभु के रूप में, अवतरित होकर आपके संप्रदाय को स्वीकार करूंगा, इसलिए तुम दो चीजों को बढ़ाओ। क्या दो चीजों को बढ़ाओ? एक तो श्री विग्रह की पूजा को बढ़ाओ, और जो ये शंकराचार्य का सिद्धांत है उसको परास्त करके वैष्णव सिद्धांत की स्थापना करो। तो ये मध्वाचार्य को चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप में स्वप्न में आकर कहा था। और मध्वाचार्य ने जब ये विग्रह निकले, तो मध्वाचार्य चाहे तो बहुत विशाल मंदिर बनवा सकते थे, लेकिन मध्वाचार्य ने क्या किया, भगवान के लिए छोटा सा ही मंदिर बनाया, लेकिन एक चीज पर बहुत जोर दिया, और वो था प्रचार। किस पर? प्रचार। हाँ, तो ये प्रचार के ऊपर, जैसे प्रभुपाद ने कई बार कहा कि हमारे पास केवल रीडिंग रूम्स एंड रेस्टोरेंट्स होने चाहिए, बस, और कुछ नहीं होना चाहिए, प्रभुपाद ने कहा। इससे हम हजारों लोगों को भक्त बना सकते हैं। प्रभुपाद के शुरुआत के लेटर्स आप पढ़ते हैं तो प्रभुपाद कहते हैं मोर रीडिंग रूम्स और मोर रेस्टोरेंट्स। हाँ, रीडिंग रूम्स में लोग आके पढ़ेंगे, उनको प्रचार कर सकते हो, रेस्टोरेंट्स में उनकी जीवा से वो आकृष्ट होंगे, फिर आप उनको भक्ति का प्रचार कर सकते हो। तो मध्वाचार्य ने प्रचार पर जोर दिया, इसलिए प्रभुपाद ने भी हमें एक स्लोगन दिया है, प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रचार ही सार है। तो मध्वाचार्य से ये प्रचार की भावना की प्रेरणा या उनसे आशीर्वाद हम ले सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का ये आंदोलन है जो प्रभुपाद ने पुनः स्थापित किया है कलयुगा के जीवों के लिए, उसमें हम थोड़ी सी भगवान की सेवा कर सके प्रचार करके। तो ऐसे मध्वाचार्य कभी कभी अपने इन दोनों भावों को प्रकट करते थे, कभी कभी हनुमान की भावना में भी वो आ जाते थे, और कभी कभी भीम की भावना में आते थे। एक बार उनके एक शिष्य ने उनको इनवाइट किया उनको इनवाइट करना मतलब इतना भोजन खाते थे जितना 30 लोग एक बार खाते, कितने हमारे जो ग्रुप आया है इतना इतना खाते है प्रसाद, कितना खाते है, इतना थोड़ा सा खाते है, लेकिन 30 लोग जो बलशाली हो जितना भोजन खाते हैं मध्वाचार्य एक ही समय में उतना भोजन पाते थे, और पाने के बाद उनको चिंता होती थी कि जो होस्ट है वो समस्या में ना पड़े, तो फिर उनके किचन में और प्रसाद अपने आप तैयार हो जाता था। वर्णन आता है कि गोवा के पास एक व्यक्ति ने उनको इनवाइट किया तो उनके लिए 4000 केले रखे थे, कितने हजार, मध्वाचार्य बैठ गए भीम की भाव में और खा लिया, और 1000 लीटर दूध, कितना। तो मध्वाचार्य पावरफुल थे, मध्वाचार्य जब गाते थे अपने हाथ में सीड होती थी तो सीड्स भी क्या कहते हैं उसको, अंकुरित हो जाते थे, इतना अधिक उनका कीर्तन और भगवान की स्तुति करने में वो पारंगत थे, इतना मधुर था। तो ऐसे मध्वाचार्य के विग्रह का हम अभी दर्शन करते हैं। तो अभी हमारे पास केवल 24 घंटे हैं उडुपी में, कितने घंटे हैं, थोड़े ज्यादा भी हो सकते, कल लेट नाइट हम जा रहे हैं, तो यहाँ हम पूरा लाभ उठाएं, अधिक से अधिक श्रवण करें, कीर्तन करें, अधिक से अधिक उडुपी कृष्ण का दर्शन कीजिए कल आज, और जितना हो सके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल आप सुबह जल्दी उठिए और 4 बजे मंदिर खुलता है तो मंदिर में आने का प्रयास कीजिए सब, और चैंटिंग आदि वहाँ ही कीजिए। तो कल सुबह 9 बजे तक हम इधर ही होंगे, ब्रेकफास्ट तक, ब्रेकफास्ट करके फिर हम यहाँ से 12 किलोमीटर दूर जाएंगे, मध्वाचार्य का जो जन्म स्थान है, क्या नाम बताया था मैंने, पजा का क्षेत्र, क्या है, पजा का क्षेत्र, तो छोटा सा विलेज है, अच्छा स्थल है, तो वहां जाएंगे, फिर वहां से आने के बाद लंच प्रसाद लेंगे, लंच के बाद थोड़ा सा आपको छुट्टी देंगे 1 घंटे का, फिर 3 या 4 बजे हम यहाँ से निकल पड़ेंगे बलराम के जो विग्रह है उनका दर्शन करने के लिए। हरे कृष्णा, तो अभी हम चलते हैं उडुपी कृष्ण का दर्शन करेंगे थोड़ा समय, और जहाँ ये उडुपी कृष्णा शाम को 7 बजे के आसपास निकलेंगे बाहर, क्या कहेंगे, रथ उनका निकलेगा परिक्रमा करने, तो वो जो रथ का रूट है वो जो स्ट्रीट है उसके सराउंडिंग में 8 मठ है, कितने मठ है, वो भी हमें दर्शन करने चाहिए। तो 8 प्रमुख मठ है, मध्वाचार्य ने जब इन विग्रहों की स्थापना की तो उन्होंने 8 मठों को स्थापित किया, लेकिन यहाँ नहीं, दूर दूर स्थानों में है, लेकिन उनके एक प्रकार से ऑफिस, ऑफिस मीन्स उन्हीं का ही प्रतीक यहाँ है, ये 8 मठ है, सुंदर सुंदर और डिटीज है, विशेष विशेष डिटीज है उन 8 मठों में, और इसके अलावा जो सबसे पुरातन 2 टेम्पल्स है आनंद उडुपी कृष्ण से पहले, चंद्रमौलेश्वर और अनंतेश्वर, अनंतेश्वर साक्षात परशुराम है, जहाँ है एक लिंग के रूप में लेकिन शिव जी के अंतर्यामी के रूप में साक्षात परशुराम है, मध्वाचार्य रोज उन्हें प्रणाम करते थे, तो ये 2 टेम्पल्स बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ हमें दर्शन और प्रणाम करने के लिए। तो हम ट्राई करते हैं उडुपी कृष्ण का दर्शन करके इनका भी दर्शन करें, और तब तक भगवान शायद बाहर आ जाएंगे 7:15 तक, फिर हम उस कार्ड फेस्टिवल में भाग ले सकते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। श्रीपाद मध्वाचार्य के, श्रील प्रभुपाद के, समवेत गौर भक्त वृंद के, निताय गौर प्रेमानंदे।
प्रसाद का भी बोलना, कुछ नहीं देना। कुछ नहीं लेना है।